ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்கபதக்ரமோபநிஷதே காயந்தி யமஷாமகா த்யானாவஸ்திதத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன்ன விதூசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்க்ருதம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதீ வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நமஹ. வியாப்தி தேவ்யே நமோ நம. ஓம் பத்ரம் மன. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஆராதே கோபால பஜ மன சிரி ராதே. ஆராதே கோபால பஜ மன சிராதே. சிரி ராதே கோபால பஜ மன சிரி ராதே. சிரி ராதே கோபால பஜ மன சிரி ராதே. ஆராதே கோபால பஜ மன சிரி ராதே. ஆராதே கோபால பஜ மன சிரி ராதே. சிரி ராதே கோபால் பஜ மன சிரி ராதே. சிரி ராதே கோபால் பஜ மன சிரி ராதே. ஆராதே கோபால் பஜ மன சிரி ராதே. ஆராதே கோபால் பஜ மன சிரி ராதே. போலே சச்சிதானந்த பகவான் கீ. சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் பகவான் की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रातः की इस पावन बेला में बैठकर ईशावास्य उपनिषद के द्वारा हम सब लोग स्वस्वरूप विचार कर रहे हैं. कल चर्चा कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद के आठवें मंत्र के द्वारा हमारा आत्मस्वरूप वह सर्वव्यापी है, अशरीरी है, और आत्मस्वरूप पर निष्ठा बने हमारी, आत्मभाव से सर्वत्र एकत्व का दर्शन कर द्वैत की कल्पना, द्वैत का भय हमारे जीवन से पलायन कर जाए। द्वितीया द्वयम भयम भवति, जहां द्वैत भासता है वहीं भय भासता है। द्वैत में भय है, द्वैत में क्लेश है, द्वैत में दुख है, द्वैत में मोह है, द्वैत में शोक है, द्वैत में ये प्रपंच खड़ा है। इस ब्रह्म विद्या के इस पावन महावाक्य के द्वारा, पावन उपदेश के द्वारा हमारी निष्ठा आत्मस्वरूप में बने, उसके लिए बहुत सुंदर चर्चा उपनिषद के माध्यम से हमने कल की। अब आइए नवे मंत्र में इसी बात को, अंध तम प्रवशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते ततो यह अविद्या उपासते विद्यागुं रथा। अंध तम प्रवशन्ति, जो लोग विद्या की उपासना करते हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, वह लोग तो घोरतम अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना रत रहते हैं, वह लोग भी उससे अधिक अंधकार में प्रवेश पाते हैं। विद्या, अविद्या और विद्या, इन दोनों की उपासना करने वाले लोग अविद्या की उपासना करने वाले अंधकार में, और विद्या की उपासना करने वाले और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है ईशावास्य के प्रथम मंत्र के द्वारा, ईशावास्मिदं सर्वम्, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है। ईशावास्मिदं सर्वम्, इस दृष्टि से ज्ञानी की जो दृष्टि है, स्वात्म दर्शन करके हुए उस ज्ञान की दृष्टि से हमें सारा जगत ईशावास ईश्वर से ही आच्छादित है, ढका हुआ है। और दूसरी बात कही, जब तक हम जिये कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिष्यामि सद्गुण समा, ज्ञानी इस संसार में जगत को ईश्वर से आच्छादित देखता है, और वहीं कर्मवादी व्यक्ति कर्म के बल पर कर्म करते हुए 100 साल की जीने की इच्छा करता है, और जीवन को कैसा व्यतीत करें, बोले जीवन ऐसा कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिष्यामि सद्गुण समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करते हुए सात्विक जो करता है, वह कर्म करते हुए जीने, कर्म न करके जीने की इच्छा न करता हुआ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, ऐसा श्रुति उपदेश करती है। इन्हीं दो बातों में एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। कर्म के मार्ग को अविद्या का मार्ग और ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान भी दो, एक इंद्रिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। इंद्रिक ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान, ज्ञान और कर्म का समन्वय और ज्ञान और कर्म का समुच्चय, समन्वय माने एक दूसरे के पूरक और समुच्चय माने एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जो रहते हैं। समन्वय तो है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं, यहां कर्म विद्या और अविद्या का जो समुच्चय है दोनों साथ साथ में है। इंद्रिक ज्ञान माने कर्म, और इंद्रिक ज्ञान में भी एक ज्ञानेन्द्रिय है और एक कर्मेन्द्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय से कर्मेन्द्रिय से तो कर्म होता है, परंतु उन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली कौन है, बोले ज्ञानेन्द्रियां हैं, और इन ज्ञानेन्द्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो कार्य होता है वह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों एक दूसरे के समुच्चय हैं, साथ साथ में। ज्ञानेन्द्रियों से उपासना और कर्मेंद्रियों से कर्म, कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं और ज्ञानेंद्रिय उसे मार्ग प्रदान करती हैं, जिसे हम अंध पंगु न्यास कहते हैं। कर्म और उपासना, विद्या से अविद्या से कर्म समझना चाहिए और विद्या से उपासना समझनी चाहिए। ज्ञानेन्द्रियां उपासना करती हैं, उपासना में लगे हुए हैं। बोले जो निरंतर उपासना में ही लगे रहते हैं, उपासना के लिए उपास्य देव हैं, आराध्य देव हैं, अपने अपने देवताओं की जो दिन रात उपासना में लगे रहते हैं, और उन उपासना से प्राप्त होने वाला जो सुख है, उस प्रकार उपासना के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं वह भी उस तत्व के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस पर मुझे स्मरण हो रहा है कि भगवती के परम उपासक रामकृष्ण देव जब मां की उपासना करते थे, तो भगवती की उपासना करते करते वो इतने तदलीन हो जाते थे कि उनके भाव जगत में साक्षात जगदम्बा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और वह उनसे प्रत्यक्ष में ऐसा ही संवाद करते थे जैसा आप और मेरा प्रत्यक्ष में भगवती से संवाद करते हुए, बात करते हुए दिखाई पड़ते थे। रामकृष्ण परमहंस की ऐसी निष्ठा थी, परंतु रामकृष्ण देव रामकृष्ण परमहंस कब बने? परमहंस की स्थिति तो है कि जिसने स्वस्वरूप आत्मबोध आत्मज्ञान को प्राप्त किया हो, तब उनके जीवन में भगवती की उपासना करते हुए अंतःकरण शुद्ध हुआ, और अंतःकरण शुद्ध होने के उपरांत तब उनको उनके थोड़े समय के लिए उनके जीवन में तोतापुरी जी महाराज एक संत जो बड़े ही तत्वज्ञ थे, तत्वनिष्ठ थे, उन्होंने उन्हें उस तत्व का उपदेश किया, महावाक का उपदेश किया, जिस उपदेश को, क्योंकि इंद्रिक ज्ञान, यहां समझना ये है कि इंद्रियों का जो ज्ञान है वह इच्छा प्रधान है। इच्छा और प्रयत्न से इंद्रियों का जो ज्ञान है, और वह ज्ञान दो तरह का है नारायण। एक इंद्रियों का ज्ञान, वह इंद्रिय ज्ञान चाहे ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा ज्ञान है स्वज्ञान, अपना ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान में तो ये हमारी कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, जिह्वा रस स्वाद लेती है, नासिका ग्रहण करती है, यह ऐन्द्रिक ज्ञान है। और दूसरा स्वज्ञान, स्वज्ञान में क्या है कि मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, और कर्ता भोक्ता मान करके कर्म का अधिकार प्राप्त होता है, उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। और इस उपासना से इसीलिए कहा कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, केवल इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, उन्हें पितृलोक की प्राप्ति होती है। और जो लोग अपने को कर्ता भोक्ता मानकर अपने स्व विषय ज्ञान, अपने लिए ज्ञान है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, जो स्व को कर्ता मान करके चलता है, वो अपने अच्छे आचरण के द्वारा, मुझे अच्छा आचरण करना चाहिए, मेरे से कोई अमर्यादित कार्य न हो, मैं हमेशा मर्यादावान रहूं, निष्ठावान रहूं, धर्ममान रहूं, सदाचारवान रहूं, इस प्रकार का सदाचरण करते हुए जो ऐसा अच्छा आचरण करते हैं, और ये अच्छा आचरण करने के लिए वो हमेशा अपने आप को किसी दिव्य, क्योंकि देवता दिव्य हैं, दिव्य शक्तियां हैं, इन दिव्य शक्तियों का आश्रय लेकर, उनका सहारा लेकर, देवताओं के आश्रय को लेकर वह निरंतर उनकी उपासना करते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार की उपासना करने से उन्हें दिव्य लोक, मतलब देव लोक आदि की प्राप्ति होती है। अच्छे आचरण से कहोगे तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति तो हो गई, परंतु जो तत्व ज्ञान था उस ज्ञान से हम वंचित रह गए। और इसीलिए उपनिषद हमें ये कहती हैं, समझाती हैं कि ऐसा जो ज्ञान है जिसकी महिमा से, यह इंद्रिय ज्ञान से भी अलग, जो जिस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा गया है, वह अध्यात्म का ज्ञान किससे प्राप्त हो? ततो भूय इवते ततो यह विद्याउंगता, वह जो आत्मविद्या है, वह आत्मविद्या किससे प्राप्त हो? बोले उसके लिए जो प्रत्यक्ष है। मान लो उदाहरण के लिए हमारे पास, हमारे साथ कोई व्यक्ति बैठा है, वो वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका हमने बहुत नाम सुना हुआ था। नाम तो बहुत सुना है, पर ये मालूम नहीं था कि ये हमारे साथ बैठा है, पास बैठा हुआ है। जो उसमें एक व्यक्ति था, उसने हमें एक वाक्य से ये बोध करा दिया कि ये अमुक व्यक्ति है, जैसे ही ये वाक्य से बोध कराया हुआ तो वो जो प्रत्यक्ष था उस प्रत्यक्ष को ही हमने अप्रोक्ष रूप से जाना। जिसे परोक्ष और अप्रोक्ष कहते हैं, स्वर्गादि लोगों का जो ज्ञान है इंद्रिक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। और यह परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष ही अप्रोक्ष रूप से हमें उसका ज्ञान हुआ। ये किसके द्वारा हुआ? बोले इस वाक्य के द्वारा। और इस वाक्य, जिस वाक्य से हमें ये बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वो जो प्रत्यक्ष था वो अप्रोक्ष रूप से हम उसे जान पाए, ये महावाक्य है। तो केवल शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या अर्थात यह महावाक्य है, जिस महावाक्य के द्वारा हमें उस तत्व का बोध हुआ, स्वस्वरूप का बोध हुआ। इसलिए उस स्वरूप के ज्ञान के लिए जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष में वह सर्व कहां नहीं है, प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष को अप्रोक्ष रूप से अप्रोक्षानुभूति हम कर सकें, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? बोले महावाक्य की। इन महावाक्यों के द्वारा हमने उस तत्व स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त किया। उसका ज्ञान तो अध्यात्म के ज्ञान के बिना, श्रुति ये कहना चाहती हैं कि अध्यात्म के ज्ञान के बिना हमें उस महावाक्य के बोध के बिना आत्म स्वरूप का, स्वस्वरूप का बोध नहीं होगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, कर्म से, उपासना से हमें नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो सकती है। उपासना करते, इसीलिए शिष्ट समुदाय में जो लोग निरंतर आत्मस्वरूप को विचार किए बिना केवल जप आदि में ही लगे रहते हैं, उन्हें तत्व का बोध नहीं होता। ये बात अलग है कि धीरे 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 वृत्ति अंतर्मुख होती हुई, और कभी भगवान की कृपा से जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब फलित होगी, परंतु प्रत्यक्ष में ज्ञान को ही एकमात्र साधन माना, ज्ञान ही एकमात्र अविद्या की निवृत्ति, विद्या ही अविद्या की निवृत्ति का कारण माना गया। महावाक्य से ही हमें प्रत्यक्षा अनुभूति, अप्रोक्षा अनुभूति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य इस प्रकार भाष्य करते हैं कि जो अविद्या रूपी कर्म की उपासना में निरंतर लगे हुए हैं। अविद्या रूपी कर्म क्या है? जो दिन रात इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़े हुए, संसार के ऐष्णाओं का त्याग करते हुए, कभी वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, ये ऐष्णाएं बड़ी बलवती होती है, नारायण मजबूत होती है, इन ऐष्णाओं के साथ जो जुड़े हुए निरंतर, पुत्रेष्णा को लेकर, वित्तेष्णा को लेकर, वित्त की, धन कमाने की इच्छा को लेकर, पुत्रादि प्राप्त करने की इच्छा को लेकर, लोकेष्णा, संसार में मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे सब जाने, मुझे सभी पहचाने, मेरा सर्वत्र आदर मान सम्मान मुझे ये मिले, इस ऐष्णा को लेकर के, ये भी बहुत बड़ी लोकेष्णा है। इन ऐष्णाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। बोले इन ऐष्णाओं के साथ बने हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। जो लोग निरंतर इंद्रिय ज्ञान, अपने इंद्रियों के ज्ञान से और ज्ञानी कर्मेंद्रियों के साथ, क्योंकि कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहती हैं, और श्री के साथ जो ज्ञानेंद्रियों की उपासना से, ज्ञानेंद्रियों से उपासना में लगे रहते हैं। बोले ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, ज्ञानेंद्री उपासना में लगी रहती हैं, कर्मेंद्री कर्म में लगी रहती हैं, कर्म उपासना दोनों उसके साथ के साथ, जिसे कहते हैं अंध पंगु न्यास के समान, या ये दोनों इस तरह से एक साथ में जुड़े हुए हैं कि अंधा व्यक्ति चल तो सकता है परंतु वो देख नहीं सकता, पंगु देख तो सकता है पर चल नहीं सकता है, परंतु ये दोनों यदि साथ मिल जाते हैं, साथ साथ मिल जाते हैं, तो इनके लिए इनकी यात्रा सहज हो जाती है। उसी प्रकार हमारी ये जब दोनों इंद्रियां साथ साथ मिलकर चलती हैं, कर्मेंद्री से कर्म हो और ज्ञानेंद्री से ज्ञान हो, ज्ञान किसका, तत्देव तत् इंद्रिय संबंध, उस इंद्रिय के देवता का ज्ञान, जैसे आंखों के देव, इन आंखों के देव अश्विनी कुमार हैं, कानों के देवता वायु हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, बुद्धि के देव सूर्य हैं, इस प्रकार हर इंद्रिय का अपना अपना देवता है, और अपने अपने देवता से हर ज्ञानेन्द्रिय का अपना व्यवहार चल रहा है, सबका अपने साथ बरत रही ज्ञानेन्द्रिय इन देवताओं के साथ व्यवहार करती हुई, इनके साथ कार्य करती हुई, अपने को कर्ता मान करके, अपने को भोक्ता मानकर, स्वविषयिक ज्ञान इन इंद्रिय से, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, अपने को कर्ता और भोक्ता मानने का ज्ञान प्राप्त, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सब ज्ञान किससे हो रहा है, बोले इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और जब इन ज्ञानेंद्रियों से इन देवताओं के साथ जुड़कर इन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो अपने को अच्छा कर्म करते हुए विद्या उपासते, इसको क्या कहा, विद्या का, जो केवल कर्म करते हैं उस पर विचार नहीं करते, विचारहीन अर्थात उपासनाहीन जो कर्म है वो तो केवल कर्म है, इसलिए उसको अविद्या कहा। नहीं तो यहां हमारे अंदर एक बड़ी भ्रांति हो जाती है कि कर्म से अविद्या उपासते, अविद्या की उपासना करने वाला अंधकार में गिरता है, ये बात तो सबको साफ साफ समझ आती है। और यदि ये साथ में ये कह दिया जाए कि विद्या की उपासना करने वाला भी उससे भी बड़े अंधकार में गिरता है, उससे भी गहरे अंधकार में गिरता है, तो हमें एक बड़ी भ्रांति सी हो जाएगी कि भाई विद्या की उपासना, विद्या से तो अंधकार से मिलना चाहिए, उठना चाहिए, अंधकार से छुटकारा मिलना चाहिए, पर भगवती श्रुति कहती है कि वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में गिरता है।